परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। भजन संहिता 89 में उल्लिखित है, मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ। याकूब की पत्री में परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का जीवन भाप सदृश है। अन्यत्र बाइबल बताता है कि जीवन एक मृदु बयार सी है जो हमारे चेहरे को छूती हुई निकल जाती है। हम कितने भी दिन जीवित रहें, बाइबल के अनुसार कुछ ही दिन हैं। मृत्यु उपरांत हम अनंत में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए एक राह बनाई जिससे हम सदा उसके साथ रहें। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। स्वर्ग एक वास्तविकता है। यीशु मसीह ने एक समय कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना 14:1-3। उसके एक चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तू मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। नरक एक वास्तविकता है। यदि आप यीशु मसीह द्वारा स्वर्ग के बारे में कही गई बात मानते हैं तो आपको यह भी मानना होगा कि यीशु मसीह ने एक वास्तविक नरक के विषय में ही बताया। उसने एक व्यक्ति का जिक्र किया जो मरकर नरक गया और उसने अधोलोक से पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिंगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। यीशु मसीह ने स्वर्ग के विषय में जो कहा, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें नरक के विषय में जो उसने कहा उस पर भी विश्वास करना चाहिए। हम अनंत काल के लिए सृजे गए थे और जब तक ईश्वर है तब तक हर इंसान जीवित रहेगा। मृत्यु के द्वार के पार इस संसार में आखिरी सांस के बाद हम सदा के लिए कहाँ जीवित रहेंगे? हम या तो परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे या परमेश्वर के बिना। हर मानव की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु उपरांत आप स्वर्ग में रहेंगे या नरक में, जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो इस प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे का प्राथमिकता से निराकरण आवश्यक है। इसी वजह यूहन्ना 3 में यीशु ने एक व्यक्ति से जो रात्रि के समय उसके पास आया कहा, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। निकोदिमस एक अति धार्मिक पुरुष था, पर उसने यीशु से कहा, आपका क्या आशय है, क्या मुझे अपने माँ के गर्भ में पुनः प्रवेश कर पुनः जन्म लेना होगा? यीशु ने उसे समझाया कि मनुष्य को आत्मिक रूप से नया जन्म लेना होगा। सब ने पाप किया है, हम सब ने पाप किया और सब अपने पापों में मृत हैं। हमें आत्मिक जन्म की आवश्यकता है। रोमियो की पत्री 3:10 में से यूं लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। बाइबिल के इस अध्याय में ईश्वर मनुष्य की कमियों की सूची बतलाता है। वह कहता है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लोहू बहाने को फुर्तीले हैं, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। इसलिए कि हरेक का मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। यीशु मसीह यहूदियों और अन्य जातियों के विषय कहते हैं कि कोई भेद नहीं। जब रोमियो 3:23 पढ़ते हैं तो वह कहता है कि सब ने पाप किया है। इसका मतलब है कि मैं पापी हूँ, आप पापी हैं, हम सब पापी हैं। मेरी पत्नी का लालल पालल एक बैप्टिस्ट पासवान के घर हुआ। दुर्भाग्य से उसके पिता की मौत एक वाहन दुर्घटना में हुई जब वह मात्र 5 वर्ष की थी। वह एक परिवार के घर से जहाँ किसी की मृत्यु हुई थी वापस आ रहे थे। मेरी पत्नी, उसका भाई और माँ घर पर ही रसोई घर में थे और केक बना रहे थे, पर वे वापस घर नहीं पहुंचे। मेरी पत्नी एक उत्तम मसीही परिवार में पली बढ़ी। उसकी माँ उसे हर रविवार सुबह एवं शाम को चर्च ले जाती थी। वह उससे यीशु तथा उद्धार के विषय में बात करती थी। मेरे पिता जुआड़ी थे। मेरे 2 बहन और 1 भाई हैं। मैं और मेरी पत्नी विभिन्न परिवेशों में पले बढ़े। चाहे हमारी जो भी पृष्ठभूमि हो, चाहे हमारे जीवन में जो भी गुजरा हो, हम सबकी एक ही समस्या है। अनेकों कष्टदायक परिस्थितियां होती हैं और इन सब के पीछे कुछ है। इन सब बुराइयों के पीछे पाप है। हम सब पापी हैं। आप कह सकते हैं मैं पापी नहीं। आपके दिमाग में यह बात आती होगी कि आप उतने घोर पापी नहीं जितने दूसरे हैं। बाइबल सत्य है और वह कहता है सबने पाप किया है। आप उतने बुरे नहीं होंगे जितना कि दूसरा व्यक्ति, पर हम सब पापी हैं। इसका मतलब परमेश्वर से सदा के लिए अलगाव। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, अर्थात मृत्यु एवं नरक। हम सब का जन्म पाप में हुआ है। एक दृष्टि से हम मृत पैदा हुए, हम आत्मिक रूप से मृत हैं। आप इस संसार को अच्छा बनाना चाहते होंगे, मुझे ऐसी ही आशा है, पर अनेक व्यक्ति जो ऐसा प्रयास करते हैं वे इस संसार को बेहतर जगह बनाते हैं जहां से नरक में जाना है। हम जीवित रहेंगे और मरेंगे। आज आपके लिए नरक होगा या स्वर्ग होगा। हम याद रखें कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा। सब पापी हैं। यीशु सबके लिए मरा, कुछ के लिए नहीं पर सबके लिए। दूसरे शब्दों में, दुनिया में कहीं भी जाकर मैं किसी को भी बता सकता हूँ यीशु तुम्हारे लिए मरा। समुद्र के हर द्वीप पर, पृथ्वी के हर महाद्वीप में, हर जाति को, हर भाषा समूह में मनुष्यों को शुभ समाचार सुनना चाहिए। शुभ समाचार सुसमाचार है। पहली कुरिन्थियों 15:1-4 में पावल प्रेरित ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हम इसे ही शुभ समाचार कहते हैं। यह सुसमाचार है। सब पापी हैं, पर यीशु हमारे पापों के लिए मरा। यह शुभ संदेश है, क्योंकि हमने यह शुभ समाचार अपने पापों के विषय में सुना। यह शुभ समाचार है। मृत्यु के पूर्व सुनने से ही हमें लाभ है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमने उसे सुना। इब्रानियों के 2:9 में लिखा है, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, और कोई बात इससे महत्वपूर्ण नहीं है जिस पर बात की जा सके। यही एक महत्वपूर्ण बात है कि यीशु आपके लिए मरा, वो सबके लिए मरा। सबसे अद्भुत कहानी जो किसी ने सुनी वह कलवरी की कहानी है, और यह कि यीशु क्रूस पर क्या करने आया। बहुत सारे लोग यूहन्ना 3:16 उद्धृत कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को भेजा कि वह हमारे लिए क्रूस पर मरे। यीशु मसीह पाप रहित जीवन जिया, वह एक कुमारी से जन्मा, उसने अपने सांसारिक क्रियाकलापों में सिर्फ अच्छा ही किया। एक रात एक बगीचे में वह प्रार्थना कर रहा था। किसी चित्रकार की कल्पना की तरह वह घुटने के बल अपने दोनों हाथ जोड़कर किसी पत्थर का सहारा ले प्रार्थना नहीं कर रहा था। बाइबल के अनुसार वह अपने चेहरे को मिट्टी पर रखकर प्रार्थना में तल्लीन था और उसके बदन से बड़े बड़े लोहू के बूंद निकल रहे थे। वो हमारे पापों के बोझ के दुख से प्रार्थना लीन था, अपने पापों के लिए नहीं। जब वह क्रूस पर लहू बहाकर हमारे लिए मरने जा रहा था, पहाड़ी पर से किद्रोन नाला होकर एक समूह मशाल और लालटेन लेकर आए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यीशु भागकर किसी कंदरा या गुफा में छुपेगा और उन्हें उसे दौड़ाकर पकड़ना पड़ेगा। पर जब वे यीशु को पकड़ने पहुंचे तो वह उनसे मिलने आया। बाइबल के देश में उस बगीचे में मैं कई बार खड़ा हुआ यह सोचता रहा कि वह किस तरह उन्हें आता देखता रहा होगा। बाइबल कहता है कि वह आगे आया। जब वह जानना चाहे कि वह कौन है तो उसने कहा, मैं हूँ। जब उसने ये शब्द कहे तो वे जो उसे पकड़ने आए थे धरती पर गिर पड़े। मनुष्य का हृदय कितना कठोर हो सकता है, जरा सोचिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं यीशु को भीड़ कैसे पकड़ने आई? जब वे उसकी आवाज सुने तो वे सब जमीन पर गिर पड़े, फिर भी वे उठकर उसकी ओर आए। यीशु ने स्वेच्छा पूर्वक अपने हाथ बंधवाए। यीशु ने स्वयं अपना प्राण दिया। कोई मनुष्य उसका प्राण नहीं ले सकता था। उसने कहा, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही दे देता हूँ। यीशु मसीह और उसके चेलों में इस तरह की परिस्थिति और तलवार आदि पर पूर्व में चर्चा हो चुकी थी। बाइबल कहता है कि उनके पास दो तलवार थे। मैं नहीं समझ सका कि इसका जिक्र बाइबल में क्यों किया गया, पर उनके पास दो तलवार थे। पतरस के पास एक तलवार था। मालकस नामक एक व्यक्ति जो पुजारियों का सेवक था ने यीशु के हाथ बांधना चाहा। पतरस इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी तलवार खींची और मालकस के सिर पर वार करना चाहा। वह मालकस के सिर पर वार करने से चूक गया और उसने उसका कान को काट दिया। मालकस का कान जमीन पर गिर पड़ा। यदि आपके चेहरे पर कोई घाव हुआ हो तो आप जानते हैं कि रक्त स्राव बहुत होता है। बेशक अत्यधिक खून बह रहा था। यीशु मसीह ने मालकस का कान जमीन पर से उठाया और उसे उसके सर से चिपका दिया। वह समूह इसकी गवाह थी, पर फिर भी वे यीशु को पकड़ कर ले गए। यीशु उस रात एक दिखावटी न्याय प्रक्रिया से गुजरे और दूसरे प्रातः उन्हें पिलातुस को सौंपा गया। उसे पिलातुस से हेरोदेस के पास ले जाया गया और फिर पिलातुस के पास वापस लाया गया। किसी ने कहा, वह राजा है, और इस कारण उन्होंने कांटों का मुकुट बनाकर उसके माथे पर जड़ दिया। वे कहने लगे, वह राजा है, चलो हम उसका अभिषेक करें। उन्होंने उसके चेहरे पर इतना थूका कि थूक ने उसके चेहरे को ढक लिया। उन्होंने कहा, वह राजा है, आओ हम उसे राजसी वस्त्र पहनाए। उन्होंने उसका ठट्ठा उड़ाया, उसके पीठ पर इतने कोड़े बरसाए कि उसका चमड़ा फट पड़ा और लहू बहने लगा। फिर उन्होंने उसके कंधों में एक बैंगनी लिबास डाल दिया। अंततः वे यीशु को उत्तेजित भीड़ के सन्मुख ले गए और भीड़ चिल्ला पड़ी, बरब्बास को रिहा करो और यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। यीशु ने कलवरी का क्रूस उठाकर कलवरी तक की यात्रा की। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उन्होंने बड़े बड़े कील लेकर उसके हाथों और पैरों पर ठोके और उसे क्रूस पर स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य लटका दिया और वह वहां लटका रहा। यदि आप यह दृश्य अपने मानस पटल पर देखें तो आप पूछ बैठेंगे, उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों किया गया? क्यों लोगों ने झूठ बोला, क्यों झूठी गवाहियां उसके विरुद्ध दी गईं? केवल यीशु ही एक ऐसा निर्दोष व्यक्ति था जो धरती पर कभी पैदा हुआ, फिर भी उसने क्रूस पर रक्त बहाकर अपना जीवन दिया। लोगों ने यीशु को क्रूस पर से पुकारते सुना, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर का क्रोध यीशु पर प्रकट हुआ जब वह हमारे लिए पाप बना। जिसने कभी पाप नहीं किया, जैसे बाइबल कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। दूसरा कुरिन्थी 5:21। उसने सारे संसार के पाप के लिए लहू बहाया और क्रूस पर मरा। हमारे दिमाग में स्पष्ट तस्वीर नहीं उभरती जब हम सारा संसार कहते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि दुनिया में 6 अरब से ज्यादा मनुष्य आज जीवित हैं और उससे ज्यादा पूर्व में संसार में रह चुके हैं। लेकिन हम यह अच्छी तरह समझ सकते हैं जब हम यह कहते हैं कि वह हमारे लिए मरा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपके लिए यीशु ने जो कुछ किया उसके विषय में आपका क्या विचार है? यीशु ने आपके लिए जो किया उसके प्रति आपका क्या उत्तर है? मैं ईश्वर का संदेश वाहक हूं और यह बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और उसने आपके लिए प्राण दिया। वह मर गया, गाड़ा गया और पुनः जीवित हो उठा। वह कब्र से सशरीर निकला। वह पत्थर जो कब्र के मुंह पर रखा गया था लुढ़का हुआ पाया गया। इसलिए नहीं कि यीशु कब्र से बाहर आए, पर इसलिए कि लोग कब्र में प्रवेश करें और देखें कि कब्र खाली है। हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं कि यीशु जीवित हुआ। यह क्या ही अद्भुत आशा की बात है। हम उसके इस कथन पर विश्वास करते हैं, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। जब यीशु ने लाजरस की बहन से पूछा, क्या तुम इस पर विश्वास करती हो? तब उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं भी विश्वास करता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार एक ही तरह से होता है। सब पापी हैं। यीशु सबके लिए मरा। तीसरी बात जो हमें जानना चाहिए वह यह है कि सभी व्यक्ति एक ही तरह से बचाए जाते हैं। हर व्यक्ति ईश्वर के पास उसी तरह से आता है। सिर्फ इसलिए कि मैं एक पास्टर हूं, मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। मेरी पत्नी सिर्फ इसलिए स्वर्ग नहीं जा सकती क्योंकि वह एक प्रचारक की बेटी है और उसके पिता एक दुर्घटना में मारे गए जब वह छोटी बच्ची थी। सबका उद्धार एक ही तरह होगा। हम एक दिलचस्प पद की तरफ ध्यान दें जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते, पर वह पूरी बात स्पष्ट करता है। रोमियो की पत्री 3:26 में यूं लिखा है, परन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। परमेश्वर न्यायी है और वह ही लोगों को धर्मी सिद्ध कर सकता है। पापियों को स्वर्ग में प्रवेश देकर ईश्वर कैसे न्यायी कहला सकता है? वह न्यायी एवं धर्मी है। बाइबल हमें बताता है कि जब हम यीशु के पास आते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तब परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करता है। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि जब हम धर्मी ठहराए गए तो इसका मतलब यह है कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया। मैं इस विचार से सहमत हूं, पर वास्तविकता में यह उससे ज्यादा मायने रखता है। इसका अर्थ यह है कि मैं कभी पापी नहीं था। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। मेरे 2 बेटे और 5 पोते हैं। मुझे अपने पोतों के विषय में बात करना अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि मेरे पोते स्वर्ग जाएं। मैं उनके साथ स्वर्ग में रहना चाहता हूं। मैं उनसे प्यार करता हूं। मैं उनकी संगति से इस दुनिया में प्रसन्न हूं, पर मैं स्वर्ग में भी उनके साथ रहना चाहता हूं। कुछ व्यक्तियों के पोते स्वर्ग जा रहे हैं पर वे खुद नहीं जा रहे हैं। यीशु के उद्धार की प्राप्ति हमारे समस्त परिवार को हो। मैं अपने परिवार के बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता। जब मेरे बच्चे कुछ गलती करते थे तो मैं उन्हें माफ किया करता था। मैं उन्हें माफ किया करता था जैसे वे मुझे किया करते थे, किंतु मैं उन बातों को भूल नहीं पाया। परमेश्वर हमें न सिर्फ माफ करता है पर वह हमारे किए गलत कार्यों का लेखा भी मिटा देता है। परमेश्वर के संतान का कोई लेखा नहीं कि वह कभी पापी था। जब कोई परमेश्वर से उसके पापों को क्षमा करने की प्रार्थना करता है और यीशु पर विश्वास करता है, तब परमेश्वर घोषित करता है कि उसके पाप का मूल्य यीशु मसीह ने सलीब पर मरकर चुका दिया है। परमेश्वर उस व्यक्ति की सजा के एवज में यीशु के बलिदान को रखता है। वह अपने संतान को उसी नजर से देखता है जैसे यीशु को। यीशु कभी भी पापी नहीं था। यह सत्य है कि उसने कभी पाप नहीं किया। परमेश्वर अपने संतानों को यीशु की मानिंद देखता है। जैसा यीशु कभी पापी नहीं था, उसी तरह हमें भी मानता है, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों को अपने लहू से धो दिया है। शैतान बहुत ही भयंकर काम कर रहा है, पर परमेश्वर जो कार्य यीशु के द्वारा करता है, वह शैतान के द्वारा किए गए बुराई से कहीं ज्यादा कारगर है। परमेश्वर का कार्य शैतान के कार्य से बड़ा है। शैतान के काम को समाप्त किया जा सकता है, यीशु के कार्य को नहीं मिटाया जा सकता है। हम सब स्वभाव से शैतान की संतान हैं। हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हर मनुष्य पर दंड की आज्ञा है। परमेश्वर के न्यायालय ने घोषित किया, समस्त संसार दोषी है, समस्त संसार को नरक में डाल दिया जाए तथा उनके पास परमेश्वर ना हो ना कोई आशा हो। मसीह यीशु संसार में आया, उसने अपना लहू बहाया और क्रूस पर प्राण दिया तथा हमारा मोल दिया, ताकि हम परमेश्वर के बिना और किसी भी आशा के बिना नरक ना जाएं। यीशु को दफनाया गया और वह ईस्टर की प्रातः मृतकों में से जी उठा। जब हम परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और विश्वास से यीशु को अपना मुक्तिदाता मानते हैं, तो वह हमारी प्रार्थना सुनता है और हमारे पापों को क्षमा कर हमें बचाता है। आप कह सकते हैं कि मैं इन सब बातों पर विश्वास करता हूं। क्या सच में? बाइबल कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इसे समझने में हमें गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो यह विश्वास करते हैं कि वे पापी हैं और यह कि यीशु उनके पापों के लिए मरा, पर उन्होंने कभी यह विश्वास नहीं किया कि यीशु ही उनकी आत्मा को बचा सकता है। बहुत से व्यक्ति उद्धार प्राप्त करने के लिए यीशु और बपतिस्मा या यीशु और अच्छे कार्य या यीशु और प्रभु भोज या यीशु और संगति को आवश्यक समझते हैं। बाइबल सिखाता है कि हमारे कार्यों से नहीं, पर यीशु और सिर्फ यीशु से हमें उद्धार मिल सकता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं के प्रयत्नों से स्वर्ग नहीं जा सकता। एक सदी पूर्व के प्रचारक चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, यदि मैं अपने अच्छे कार्यों के कारण एक रत्न जड़ित द्वार से स्वर्ग में प्रवेश कर स्वर्ण जड़ित मार्ग पर चलते हुए बहुत सारे आलिशान अट्टालिकाएं देखूं, तो मैं कहूंगा, हे प्रभु, मैं यहां रहने लायक नहीं हूं। पर यदि मैं इसलिए स्वर्ग जाऊं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए मार्ग प्रशस्त किया, तब मैं उस रत्न जड़ित द्वार से प्रवेश कर कहूंगा, वाह, कितनी अद्भुत जगह है, और मैं यीशु से ऐसे ही कार्य की अपेक्षा कर रहा था। आप पूछ सकते हैं, मैं क्या करूं? मैं अपनी जीवन कथा आपको सुनाना चाहता हूं। जब मैं युवा था, तब अपने स्थानीय आराधनालय में मैं क्वायर प्रैक्टिस के लिए गया। क्वायर निदेशक ने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ देर रुको, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। उसने पूछा, क्लेरेंस, क्या तुम मसीही हो? उसे मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान था और वह इस कारण परेशान था। मैंने कहा, मैं सोचता हूं कि मैं मसीही हूं। मैं आराधनालय जाता हूं, मेरे पास बाइबल है, मैं संडे स्कूल जाता हूं। उसने मेरी कमी को महसूस किया। वह मुझे पासबान के कार्यालय लेकर गया और पासबान और क्वायर निदेशक मेरे सामने बैठे। उन्होंने मुझसे कहा कि अपने दिल से प्रार्थना करूं और यीशु और सिर्फ यीशु पर विश्वास करूं, परमेश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांगू या स्वीकारते हुए कि मैं पापी हूं और यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता स्वीकारूं। मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था, पर उन्होंने प्रार्थना करने में मेरी सहायता की। मुझे ऐसे प्रार्थना मालूम थे, मैं अब सोने जा रहा हूं, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे निद्रा दे। यदि मैं जागने के पूर्व मर जाऊं, मैं विनती करता हूं प्रभु कि मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मुझे मसीही बनने के लिए कैसे प्रार्थना करना चाहिए नहीं आता था। उन्होंने मुझे उद्धार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना सिखलाया। उस दिन मैंने अपने आप पर विश्वास नहीं किया न उन पर, मैंने सिर्फ यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसी के द्वारा सबको उद्धार प्राप्त होता है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह मेरे पाप क्षमा करे और मैंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया। ना तो घंटियां बजी, ना ही रोशनी चमकी, मुझे कुछ भी विचित्र नहीं लगा। मुझे महसूस हुआ कि मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया और उसे उसके वचनानुसार स्वीकारा, विश्वास किया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। आप परमेश्वर के विषय में कुछ भी कह सकते हैं, यीशु के बारे में, उसके उद्धार करने की शक्ति के विषय में, पर वह आपका व्यक्तिगत उद्धारकर्ता तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उस पर स्वतः विश्वास न करें और उसे अपना मुक्तिदाता ना माने। मुझे मालूम है कि मैं किसी दिन ईश्वर के साथ स्वर्ग में रहूंगा। क्या ही अच्छी बात होगी यदि आप भी स्वर्ग में हो। आप वहां तभी पहुंच सकते हैं जब आप स्वतः यीशु पर विश्वास करें और उसी पर अपने उद्धार का भरोसा करें। सब ने पाप किया, यीशु सबके लिए मरा, सब उसी के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। प्रार्थना कीजिए और यीशु को अपना मुक्तिदाता आज ही ग्रहण कीजिए। आप अपने अंतःकरण से यह प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु, मुझे मालूम है कि मैं पापी हूँ। मुझे मालूम है कि आप मेरे पापों के लिए मरे और मृतकों में से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करें और मेरे जीवन में आए। मैं आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानता हूँ। मेरी सहायता करें कि मैं आज से केवल आपके लिए जीऊं, यीशु के नाम से, आमीन। इस पत्रिका को पढ़ने के पश्चात कृपया मुझे पत्र लिखकर सूचित करें कि क्या आपने प्रार्थना किया और प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। आपके नूतन मसीह जीवन में सहायता हेतु मैं आपको कुछ भेजना चाहता हूं। मेरा पता है पास्टर क्लेरेंस सेक्सटन, पोस्ट बॉक्स नंबर 159, पॉवेल, टेनेसी 37849, संयुक्त राज्य अमेरिका। मेरा पता पुनः नोट करें, पास्टर क्लेरेंस सेक्सटन, पोस्ट बॉक्स नंबर 159, पॉवेल, टेनेसी 37849, यूएसए।